1980 और 90 के दशक में ना पश्चिमी देशों के कुछ बहुत ही जाने माने विद्वान एक कमरे में इकट्ठा हुए थे और उनके सामने एक बहुत बहुत बड़ा ऐतिहासिक सवाल था। सवाल ये था कि ईसा मसीह ने असल में क्या कहा था और क्या नहीं।
अच्छा, वो जीसस सेमिनार वाला किस्सा?
बिल्कुल, मतलब इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने जिस तरीके का इस्तेमाल किया वो बहुत अजीब था। उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने कंचों का इस्तेमाल किया, मतलब मार्बल्स का।
अरे हाँ, रंग बिरंगे कंचे डालकर वोटिंग की थी उन्होंने।
हाँ, लाल कंचा डाला तो मतलब बात सचमुच कही गई थी, गुलाबी मतलब शायद कही गई थी, और काला कंचा मतलब बात पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मतलब एक बाल्टी में कंचे डालकर प्राचीन इतिहास का फैसला हो रहा था,
और वो भी मीडिया के कैमरों के सामने।
एकदम सही, कैमरे चमक रहे थे और ये सब चल रहा था।
देखिए, जीसस सेमिनार की वो जो घटना थी ना, वो मीडिया का ध्यान खींचने का एक बहुत ही बेहतरीन हथकंडा थी। लेकिन अगर हम मुख्य धारा के इतिहासकारों की बात करें तो वो इसे गंभीरता से नहीं लेते।
जाहिर है,
क्योंकि इतिहास कोई लोकतंत्र नहीं है। मतलब आप कंचे डालकर या हाथ उठाकर ये तय नहीं कर सकते कि 2000 साल पहले असल में क्या हुआ था।
सही बात है।
और आज की इस गहरी पड़ताल का हमारा मुख्य मकसद भी यही है। हम डॉक्टर क्रेग कीनर के व्याख्यान के नोट्स के आधार पर सुसमाचारों की, विशेष रूप से मैथ्यू के सुसमाचार की ऐतिहासिक विश्वसनीयता को परखने वाले हैं।
बहुत ही दिलचस्प विषय है।
और हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारी ये जो चर्चा है ये किसी धार्मिक नजरिए से नहीं हो रही है।
बिल्कुल, हम यहाँ कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं।
एकदम, हम बस विशुद्ध रूप से एक इतिहासकार की तरह इन दस्तावेजों की ऐतिहासिक और साहित्यिक चीरफाड़ करेंगे।
तो ये जासूसी शुरू करने से पहले ना, मुझे लगता है उस बुनियादी शब्द को समझना होगा जिस पर ये पूरी चर्चा टिकी है।
कौन सा शब्द?
गॉस्पेल, या जिसे हिंदी में सुसमाचार कहते हैं। अक्सर लोग इसे बस एक धार्मिक किताब का नाम मान लेते हैं।
हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। गॉस्पेल का शाब्दिक अर्थ होता है शुभ समाचार या गुड न्यूज। इसका ऐतिहासिक संदर्भ बहुत दिलचस्प है। अगर आप प्राचीन यहूदी ग्रंथों को देखें, विशेषकर यशाया 52:7 में, तो वहाँ एक ऐसे दूत की कल्पना की गई है जो पहाड़ों के पार दौड़ता हुआ आ रहा है।
अच्छा, कोई संदेश लेकर।
हाँ, वो ये खबर ला रहा है कि युद्ध समाप्त हो गया है, शांति आ गई है और उद्धार करीब है। मतलब ये कोई दर्शन या थियरी नहीं थी, ये एक ठोस ऐतिहासिक घटना की घोषणा थी। तो जब हम इन सुसमाचारों का विश्लेषण करते हैं तो हम असल में ये देख रहे हैं कि प्राचीन लेखकों ने इस घोषणा को कागज पर कैसे सहेजा।
लेकिन मुझे लगता है यहीं पर सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है।
कैसी समस्या?
मतलब अगर हम आज के चश्मे से उन प्राचीन दस्तावेजों को देखेंगे तो सब कुछ उल्टा ही नजर आएगा ना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति किसी हथौड़े का इस्तेमाल दरवाजा रोकने के लिए करे।
दरवाजा रोकने के लिए?
हाँ, और फिर वो शिकायत करे कि यार ये हथौड़ा तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जब भी हवा चलती है दरवाजा बंद हो जाता है।
अरे तो उसमें हथौड़े की क्या गलती है?
वही तो, हथौड़ा तो कील ठोकने के लिए बना है ना, उसे दरवाजा रोकने के काम में लाना ही मूर्खता है।
बिल्कुल,
मुझे लगता है कि प्राचीन साहित्य के साथ भी आज के लोग यही कर रहे हैं। वे उसे आधुनिक वृत्तचित्र, मेरा मतलब है किसी डॉक्यूमेंट्री या न्यूज रिपोर्ट के नजरिए से देखते हैं।
ये हथौड़े वाली उपमा ना इस पूरी चर्चा की नींव है। सुसमाचार कोई उपन्यास नहीं है।
अच्छा,
प्राचीन काल में उपन्यास लिखे जाते थे लेकिन वे पूरी तरह काल्पनिक होते थे, उनका कोई ऐतिहासिक स्रोत नहीं होता था। सुसमाचारों को प्राचीन जीवनी या एंशिएंट बायोग्राफी की श्रेणी में रखा जाता है, होती है, फिर बचपन, फिर जवानी, मतलब सब कुछ एक कालानुक्रमिक या क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन में होता है।
हाँ, एक के बाद एक घटना।
लेकिन इन प्राचीन जीवनियों को पढ़ने पर आपको लगेगा कि लेखकों को टाइमलाइन की कोई खास परवाह ही नहीं थी।
हाँ, मैंने भी ध्यान दिया है कि घटनाओं का क्रम आगे पीछे हो जाता है।
वो इसलिए क्योंकि प्राचीन जीवनी लेखक विषयवार यानी टॉपिकल तरीके से लिखते थे।
विषयवार मतलब?
उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ घटनाओं की सूची बनाना नहीं था, वो उस व्यक्ति के चरित्र और उसके संदेश के मूल तत्व को सामने लाना चाहते थे।
अच्छा, तो वो घटनाओं को किसी खास विषय के इर्द गिर्द इकट्ठा करते थे।
बिल्कुल, मान लीजिए एक अध्याय में उन्हें ये दिखाना है कि ईसा मसीह का धर्म गुरुओं के साथ कैसा टकराव था, तो वो अलग अलग समय की घटनाओं को एक साथ पिरो देंगे।
ताकि वो खास विषय उभर कर सामने आए।
हाँ, इसीलिए आपको मैथ्यू और लूक के ग्रंथों में घटनाओं का क्रम अलग अलग मिल सकता है। वो इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे।
तो वो बस उस समय की साहित्यिक शैली का पालन कर रहे थे।
एकदम सही।
लेकिन पता है मुझे ना, प्राचीन इतिहासकारों की सत्य निष्ठा पे थोड़ा संदेह होता है।
ऐसा क्यों?
मतलब क्या वे वाकई में तथ्यों की इतनी परवाह करते थे? मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि रोम और यूनान के ज्यादातर लेखक बस अपने राजाओं की तारीफ में लगे रहते थे। एक तरह का प्राचीन पॉलिटिकल पीआर, जहां बस चापलूसी होती थी और तथ्यों से किसी को मतलब नहीं था।
ये बहुत ही आम धारणा है, लेकिन अगर हम पहली शताब्दी के रोमन और यूनानी विचारकों के खुद के शब्द पढ़े ना, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है।
अच्छा,
जैसे कि?
जैसे प्लीनी द यंगर और पॉलिबियस। इन इतिहासकारों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि इतिहास का मुख्य काम सत्य को दर्ज करना है।
उनका मानना था कि अगर कोई लेखक इतिहास के नाम पर केवल मनोरंजन परोस रहा है, तो वो अपने पेशे के साथ गद्दारी कर रहा है।
लेकिन क्या इस बात का कोई ठोस प्रमाण है? मतलब क्या वो सच में ऐतिहासिक सटीकता को लागू भी कर रहे थे या सिर्फ बातें बना रहे थे?
इसके बहुत शानदार ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। रोमन सम्राट ओथो का मामला ले लीजिए।
ओथो? उनका शासनकाल तो बहुत छोटा था ना?
हाँ, बहुत ही छोटा और उथल पुथल भरा। रोमन इतिहासकार स्वेटोनियस ने ओथो की एक जीवनी लिखी जो आकार में बहुत ही छोटी है।
कितनी छोटी?
मुश्किल से कोई 2000 शब्दों की। अब आधुनिक विद्वानों ने स्वेटोनियस की इस छोटी सी किताब को उठाया और उसकी तुलना उस दौर के दो अन्य महान इतिहासकारों से की, प्लूटार्क और टैसिटस से।
अच्छा, तो इन तीनों ने अलग अलग स्रोतों से लिखा था?
बिल्कुल, और अलग अलग उद्देश्यों से भी।
तो नतीजा क्या निकला? क्या उनकी बातें मेल खाती थी?
उन महज 2000 शब्दों के भीतर विद्वानों को तीनों लेखकों के बीच लगभग 50 सटीक ऐतिहासिक समानताएं मिली।
अरे वाह, 50?
हाँ, घटनाओं का विवरण, नाम, स्थान, सब कुछ मेल खाता था। इसका सीधा मतलब है कि वे लेखक हवा में तीर नहीं चला रहे थे।
वो आधिकारिक रिकॉर्ड और चश्मेदीदों पर निर्भर थे।
बिल्कुल,
लेकिन केवल 2000 शब्दों में 50 ठोस ऐतिहासिक डेटा पॉइंट, ये तो जानकारी का बहुत ही सघन रूप हो गया।
हाँ, और इसी से मुख्य धारा के इतिहासकार एक बड़े निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।
क्या निष्कर्ष?
अगर स्वेटोनियस की छोटी सी किताब इतनी सटीक हो सकती है, तो मार्क का सुसमाचार तो आकार में उससे करीब 5 गुना बड़ा है।
तो उसमें तो ऐतिहासिक तथ्यों का एक पूरा खजाना होना चाहिए।
बिल्कुल, चूंकि मार्क भी उसी प्राचीन जीवनी की शैली में लिख रहा था, इसलिए ये उम्मीद करना पूरी तरह से तर्कसंगत है कि उसमें भी भारी मात्रा में सत्यापित ऐतिहासिक तथ्य मौजूद होंगे।
चलिए, ओथो के उदाहरण से ये तो साबित हो गया कि प्राचीन लेखक तथ्यों को लेकर गंभीर थे।
हाँ,
लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक बड़ा विरोधाभास पैदा होता है।
बताइए।
अगर वो तथ्यों पर इतने अडिग थे, तो फिर मैथ्यू, मार्क और ल्यूक की कहानियों में हमें अंतर क्यों दिखाई देते हैं? मतलब अगर तीन लोग एक ही घटना का वर्णन कर रहे हैं और तथ्यों के प्रति वफादार हैं, तो उनके शब्द बिल्कुल एक जैसे क्यों नहीं हैं? क्या ये उनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाता?
ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें संपादकीय इतिहास, जिसे रिडक्शन हिस्ट्री कहते हैं, उसकी प्रक्रिया को समझना होगा।
रिडक्शन हिस्ट्री?
हाँ, कहानियों में भिन्नता का होना ये साबित नहीं करता कि वे मनगढ़ंत हैं, बल्कि ये दर्शाता है कि हर लेखक के लक्षित श्रोता अलग थे।
मतलब उनकी ऑडियंस अलग थी।
बिल्कुल, शब्दावली के चयन को ही ले लीजिए। मार्क अपने पूरे ग्रंथ में बार बार परमेश्वर का राज्य या किंगडम ऑफ गॉड शब्द का प्रयोग करता है।
अच्छा,
ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुख्य रूप से रोमन या गैर यहूदी लोगों के लिए लिख रहा था, जिन्हें ये स्पष्ट रूप से बताना जरूरी था कि किस ईश्वर की बात हो रही है।
ये तो लॉजिकल है।
एक गहरा सांस्कृतिक सम्मान है।
अच्छा, कैसे?
यहूदी परंपरा में ईश्वर के पवित्र नाम का सीधा उच्चारण करने से बचा जाता था।
अरे हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा है कि वे नाम लेने से कतराते थे।
बिल्कुल, तो मैथ्यू, जो विशुद्ध रूप से यहूदी दर्शकों के लिए लिख रहा था, उनके सांस्कृतिक सम्मान को बनाए रखने के लिए स्वर्ग शब्द का उपयोग करता है।
तो ये तथ्यों में हेरफेर नहीं, बल्कि अनुवाद का कौशल है।
एकदम सही, और केवल शब्दावली ही नहीं, घटनाओं के क्रम में भी यही संपादन दिखाई देता है।
कोई उदाहरण है इसका?
हाँ, मार्क के सुसमाचार में एक घटना है जहाँ ईसा मसीह पहले एक अंजीर के पेड़ को श्राप देते हैं, फिर यरूशलेम के मंदिर में जाकर वहाँ की व्यवस्था को चुनौती देते हैं, और उसके बाद जब वे लौटते हैं तब वो पेड़ सूखा हुआ मिलता है।
अच्छा, ये मार्क में है।
हाँ।
और मैथ्यू में?
मैथ्यू इसी घटना को थोड़ा अलग तरह से पेश करता है। वो लिखता है कि पेड़ को श्राप दिया गया और वो तुरंत सूख गया, और उसके बाद मंदिर की घटना का जिक्र आता है।
तो क्या मैथ्यू ने इतिहास बदल दिया?
नहीं, मैथ्यू ने कहानी को तार्किक रूप से संकुचित किया है। वो अपने श्रोताओं के लिए एक ऐसा विषयगत ढांचा तैयार कर रहा था जिसे याद रखना आसान हो।
अच्छा, ताकि मेन पॉइंट समझ में आए।
हाँ, क्योंकि पेड़ का सूखना और मंदिर की सफाई दोनों ही ईश्वरीय न्याय के प्रतीक हैं। मैथ्यू ने उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया ताकि मुख्य संदेश बिना किसी रुकावट के सीधे श्रोताओं तक पहुंचे।
ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। और नोट्स में ना एक लकवा ग्रस्त आदमी की घटना का जो जिक्र है वो इस बात को और भी अच्छी तरह से स्पष्ट करता है।
हाँ, वो छत का रहस्य वाला किस्सा।
बिल्कुल, माँ की कहानी में काफी नाटकीयता है। एक लकवा ग्रस्त आदमी को भीड़ के कारण दरवाजे से नहीं ले जाया जा सका तो उसके दोस्तों ने छत में छेद किया और उसे ईशा मसीह के सामने नीचे उतारा। लेकिन मैथ्यू उसी घटना को लिखता है, आदमी के ठीक होने की बात भी लिखता है, लेकिन उस छत वाले पूरे हिस्से को ही गायब कर देता है।
अब इसके पीछे का कारण बहुत दिलचस्प है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें प्राचीन दुनिया की आर्थिक हकीकत को समझना होगा।
आर्थिक हकीकत मतलब पैसे की बात?
हाँ, आज हमारे लिए किताबें छापना या डिजिटल नोट्स बनाना एकदम मुफ्त जैसा है, लेकिन पहली शताब्दी में पपीरस या चर्म पत्र का एक लंबा स्क्रोल तैयार करना बहुत महंगा सौदा था।
अच्छा, बहुत महंगा होता था वो?
एक पूरा सुसमाचार लिखने का खर्च आज के हिसाब से हजारों डॉलर के बराबर हो सकता था।
बापरे,
तो जगह की बहुत कमी थी। लेखकों को हर एक इंच का हिसाब रखना पड़ता था।
तो क्या मैथ्यू ने जगह बचाने के लिए वो हिस्सा हटा दिया?
बिल्कुल, मैथ्यू ने छत का विवरण इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ था। उसमें यह तय किया कि इस कहानी का मुख्य बिंदु क्या है। मुख्य बिंदु था उस आदमी का ठीक होना और उसे क्षमा मिलना। छत का टूटना महज एक पृष्ठभूमि थी।
ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहानियां सुनाते हैं।
कैसे?
मान लीजिए मेरी पत्नी ने मुझे बाजार में हुई कोई घटना बहुत विस्तार से बताई। अब अगर मैं वही घटना अपने किसी दोस्त को सुना रही हूँ जिसके पास काफी समय है, तो मैं हर छोटी बड़ी बात, माहौल और शायद कोई मजाकिया हिस्सा भी शामिल करूंगी।
बिल्कुल।
लेकिन अगर वही घटना मुझे अपने बॉस को केवल 2 मिनट में समझानी हो, तो मैं कहानी के मूल तथ्य, कौन था, क्या हुआ और नतीजा क्या निकला, सिर्फ वही रखूंगी, लेकिन बाकी गैर जरूरी विवरणों को काट दूंगी।
एकदम सटीक उपमा है।
तो कहानी का छोटा या अलग होना उसे झूठा नहीं बनाता, ये बस श्रोता और समय के अनुसार उसे ढालना है, है ना?
हाँ, एक प्राचीन जीवनी लेखक का असली कौशल इसी बात में था कि वो किस विवरण को रखता है और किसे छोड़ता है बिना मूल सत्य से समझौता किए।
ये सब तो तब लागू होता है ना जब कोई व्यक्ति बैठकर ग्रंथ लिख रहा हो। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और बड़ी उलझन है जो शायद हर आधुनिक इंसान को परेशान करती है।
क्या उलझन?
ईसा मसीह की मृत्यु और मार्क के सुसमाचार के लिखे जाने के बीच लगभग 40 साल का लंबा अंतराल था। 40 साल!
हाँ, ये एक बड़ा गैप है।
आज के स्मार्टफोन युग में जहाँ हम अपने खुद के फोन नंबर याद नहीं रख पाते, ये सोचना भी असंभव लगता है।
क्योंकि हम सब कुछ क्लाउड पर स्टोर करते हैं।
बिल्कुल। तो क्या 40 साल तक बातों को केवल दिमाग में रखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाना उस बच्चों वाली टेलीफोन गेम जैसा नहीं है?
वो कानफूसी वाला खेल?
हाँ, जहाँ बात पहले इंसान से शुरू होकर 10वें इंसान तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह एक चुटकुला बन जाती है। मानव स्मृति तो बहुत कमजोर होती है ना?
देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण से मानव स्मृति को कमजोर समझना एक बहुत बड़ी भूल है।
ऐसा क्यों?
प्राचीन काल में जब किताबें दुर्लभ थीं, तब समाज का पूरा कामकाज मौखिक परंपरा पर ही निर्भर था। इंसानी दिमाग की डेटा स्टोर करने की क्षमता अकल्पनीय है, बशर्ते उसे वैसे प्रशिक्षित किया जाए।
क्या इसका कोई वास्तविक उदाहरण है?
डॉक्टर कीनर अपने नोट्स में एक बहुत ही सुंदर आधुनिक उदाहरण देते हैं, उनकी 96 वर्षीय पड़ोसी एना गुलिक का।
अच्छा, उनके साथ क्या हुआ?
एना आज भी 1700 के दशक में हुए अपने परिवार के पलायन और संघर्ष की कहानियां बिल्कुल सटीकता से याद रखती हैं।
1700 के दशक की?
हाँ, और मजे की बात यह है कि उनकी बताई बातों को बाद में ऐतिहासिक दस्तावेजों से सत्यापित भी किया गया, वो एकदम सच निकली।
अरे वाह, अगर आज के समय में कोई ऐसा कर सकता है तो उस समय के लोगों के लिए ये तो रोजमर्रा की बात रही होगी।
बिल्कुल, प्राचीन शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से रटने और याद रखने पर आधारित थी। अनपढ़ चारण, जिन्हें हम बार्ड्स कहते हैं, होमर के इलियड और ओडिसी जैसे विशाल महाकाव्यों को शब्दशः याद रखते थे,
जिनमें हजारों पंक्तियां होती थीं।
नजारों! और रोमन दार्शनिक सेनेका द एल्डर का उदाहरण तो इतिहास में दर्ज है।
उनका क्या किस्सा है?
वो अपने बुढ़ापे में भी दशकों पहले सुने गए 100 लंबे भाषण बिना किसी गलती के दोहरा सकते थे।
100 भाषण?
इतना ही नहीं, वो एक बार सुनकर 2000 अजनबियों के नाम ठीक उसी क्रम में सुना सकते थे।
2000 नाम? हम तो एक पार्टी में 3 लोगों से मिलने के बाद उनका नाम भूल जाते हैं।
हाँ, और केवल सेनेका ही नहीं, इन नोट्स में उस व्यक्ति का भी जिक्र है जिसने एक नीलामी में पूरा दिन बिताया।
ऑक्शन में?
हाँ, और शाम को बिना किसी कागज के हर एक वस्तु, उसकी बिकी हुई कीमत और खरीदार का नाम बता दिया।
ये तो सच में कमाल है। दिमाग की हार्ड ड्राइव आज के कंप्यूटरों को भी टक्कर दे सकती है। लेकिन वो जो कविता चोरी वाला किस्सा है वो तो सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना?
अरे हाँ, वो प्राचीन काल की बौद्धिक क्षमता का एक बहुत ही मनोरंजक प्रमाण है।
हाँ, जहाँ एक कवि मंच पर अपनी नई कविता पढ़ रहा था
और श्रोताओं में बैठा एक व्यक्ति जिसकी याददाश्त असाधारण थी उसे सुनते सुनते पूरी तरह याद कर लेता है
और फिर बीच में खड़ा होकर दावा कर देता है ये कविता तो उसकी है।
हाँ, वो कहता है कि मंच पर खड़ा कवि उसकी रचना चुरा रहा है। बेचारा असली कवि बुरी तरह घबरा जाता है
और बाद में वो व्यक्ति हंसते हुए बताता है कि वो मजाक कर रहा था, उसने बस अभी अभी उसे सुनकर याद किया है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि उस समय स्मृति कोई जादू नहीं थी बल्कि एक ऐसी मांसपेशी थी जिसे बचपन से ही कसरत कराकर लोहे जैसा मजबूत बनाया जाता था।
ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन फिर भी ना मेरी वो टेलीफोन गेम वाली शंका अभी पूरी तरह दूर नहीं हुई है।
क्यों, अभी क्या दिक्कत है?
मतलब कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर जानकारी एक इंसान से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक जाती है तो उसमें मिलावट की गुंजाइश हमेशा रहती है। एक कड़ी भी टूटी तो पूरी कहानी बदल जाएगी ना।
और यहीं पे सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करने की जरूरत है। टेलीफोन गेम वाला तर्क इसलिए काम नहीं करता क्योंकि सुसमाचारों का प्रसारण चेन ट्रांसमिशन नहीं था।
तो क्या था?
वो नेट ट्रांसमिशन था, एक पूरे नेटवर्क की तरह।
मैं इसे ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है?
देखिए, टेलीफोन गेम एक चेन या श्रृंखला है। एक व्यक्ति दूसरे के कान में गुपचुप तरीके से कुछ फुसफुसाता है। अगर उस एक व्यक्ति ने गलती की तो आगे की पूरी चेन में वो गलती फैल जाएगी।
हाँ, क्योंकि कोई और सुन नहीं रहा होता।
बिल्कुल, लेकिन पहली शताब्दी के शिष्यों का समूह एक नेटवर्क या जाल की तरह काम करता था। ये कोई गुप्त कानाफूसी नहीं थी, जानकारी सामूहिक रूप से साझा की जाती थी।
अच्छा, जिसे सामूहिक स्मृति कहते हैं।
हाँ, कम्युनल मेमोरी। मान लीजिए कोई शिष्य भीड़ को बता रहा है कि ईसा मसीह ने वो खास उपदेश पहाड़ पर नहीं बल्कि झील के किनारे दिया था,
तो क्या होता?
वहां मौजूद दर्जनों अन्य शिष्य जो खुद चश्मदीद गवाह थे तुरंत उसे बीच में रोककर सुधार देते। वो कहते, नहीं, वो पहाड़ पर हुआ था।
अच्छा, मतलब ये आत्म सुधारक प्रणाली थी, कोई गलत बोलता तो दूसरा टोक देता।
बिल्कुल, ये किसी एक व्यक्ति की कमजोर याददाश्त पर निर्भर नहीं थी।
और ये जो गुरु शिष्य परंपरा थी ये अपने आप में बहुत सख्त थी ना? आज तो हम स्कूल या कॉलेज सिर्फ जानकारी लेने जाते हैं।
आज का सिस्टम अलग है।
लेकिन प्राचीन यहूदी और यूनानी संस्कृति में एक शिष्य बनने का मतलब था अपना पूरा जीवन गुरु के प्रति समर्पित कर देना।
प्रशिक्षण इतना कठोर था कि पाइथागोरस के शिष्यों के लिए एक नियम था।
क्या नियम?
वे सुबह तब तक अपने बिस्तर से नहीं उठ सकते थे जब तक वे पिछले दिन पढ़ाए गए पूरे पाठ को बिना किसी गलती के बोलकर न सुना दे।
बाप रे।
और यहूदी परंपरा में तो रब्बी या गुरु का हर एक शब्द और हर एक कार्य धर्म ग्रंथ के समान माना जाता था।
वे केवल उपदेश नहीं रटते थे
तो और क्या करते थे? वे गुरु के चलने, खाने और बात करने के तरीके की भी नकल करते थे।
वो बिस्तर के नीचे छिपने वाले शिष्य की कहानी इसका सबसे सटीक और थोड़ा हास्यप्रद उदाहरण है ना?
हाँ, वो बहुत मजेदार किस्सा है।
नोट्स में बताया गया है कि कैसे एक यहूदी शिष्य अपने रब्बी के बेडरूम में बिस्तर के नीचे छिप गया था।
हाँ, बस ये देखने के लिए कि उसके गुरु अपने निजी पलों में कैसा व्यवहार करते हैं,
ताकि वो उसकी भी हूबहू नकल कर सके। जाहिर है जब गुरु ने उसे पकड़ा तो उसे बहुत फटकार लगाई गई होगी।
बिल्कुल, डांट पड़ी। लेकिन ये घटना भले ही अजीब लगे, ये साबित करती है कि शिष्यों के भीतर गुरु के जीवन को सटीकता से दर्ज करने का कितना भयंकर जुनून था।
ये जुनून ही ऐतिहासिक सटीकता की गारंटी था।
और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ सिर्फ जुबानी ही नहीं चल रहा था, दस्तावेजीकरण या नोट्स लेने की प्रथा भी मौजूद थी।
अच्छा, वो लोग लिखते भी थे?
हाँ, रोमन शिक्षक क्विंटिलियन के मामले को देखें। उनके छात्रों ने उनके व्याख्यानों के इतने सटीक नोट्स लिए कि जब उन नोट्स को बिना उनकी अनुमति के प्रकाशित किया गया ना,
तो क्या हुआ?
तो उसमें बोलते समय हुई व्याकरण की छोटी छोटी गलतियां भी जस की तस छप गईं।
अरे वाह, एकदम ट्रांसक्रिप्ट की तरह।
हाँ, और अगर हम सुसमाचारों के लेखकों को देखें तो मैथ्यू पेशे से एक टैक्स कलेक्टर था, यानी कर वसूलने वाला।
तो टैक्स कलेक्टर होने से क्या फर्क पड़ता है?
कर वसूलने वालों को विस्तृत बही खाते बनाने और संख्याओं का हिसाब रखने में महारत हासिल होती थी। उनके पास शॉर्ट हैंड जैसी तकनीकें भी हुआ करती थीं।
मतलब वो तुरंत नोट्स ले सकते थे?
बिल्कुल। तो ये मान लेना कि 40 सालों तक किसी ने एक शब्द भी कागज पर नहीं लिखा होगा, ये ऐतिहासिक रूप से गलत है। उनके पास मजबूत याददाश्त भी थी और दस्तावेज बनाने का कौशल भी।
तो जब हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं, प्राचीन जीवनी की साहित्यिक शैली, प्लिनी और स्वीटोनियस जैसे इतिहासकारों की सटीकता
और सामूहिक स्मृति का नेटवर्क, साथ ही शिष्यों का वो अटूट प्रशिक्षण।
हाँ, तो एक बेहद स्पष्ट तस्वीर उभरती है यदि हम धार्मिक बहसों को किनारे रखकर एक विशुद्ध इतिहासकार के औजारों से इन सुसमाचारों को परखें तो इनकी ऐतिहासिक नींव बहुत गहरी और ठोस साबित होती है।
एकदम सही। ये मानना पूरी तरह से तार्किक है कि इन ग्रंथों में जो दर्ज है वो पहली शताब्दी के चश्मदीदों के अनुभवों के बेहद करीब है।
ये पूरी पड़ताल ना प्राचीन इतिहास को देखने के हमारे नजरिए को जड़ से बदल देती है। जिस चीज को हम अक्सर धुंधला, मिलावटी या महज टेलीफोन गेम मान लेते हैं, वो असल में डेटा को सहेजने और क्रॉस चेक करने का एक बहुत ही परिष्कृत और वैज्ञानिक सिस्टम था
जिसे उस समय के समाज ने विकसित किया था।
बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार उभर कर आता है जिस पर हर किसी को गंभीरता से सोचना चाहिए।
वो क्या?
सोचिए, लिखित पुस्तकों, प्रिंटिंग प्रेस और क्लाउड स्टोरेज के युग से पहले इंसानी दिमाग और सामूहिक नेटवर्क की डेटा स्टोर करने की क्षमता कितनी अविश्वसनीय थी।
वाकई?
अगर प्रथम शताब्दी के मध्य पूर्व में मौखिक परंपरा इतनी सटीक, इतनी आत्मसुधारक और वैज्ञानिक हो सकती है,
तो आज दुनिया भर में ऐसी और कितनी परंपराएं मौजूद हैं?
बिल्कुल। दुनिया भर की अन्य प्राचीन, स्वदेशी और आदिवासी मौखिक परंपराएं, जिन्हें आधुनिक पश्चिमी इतिहासकारों ने महज मिथक, लोक कथा या जादू टोना कहकर खारिज कर दिया।
जो वास्तव में कठोर ऐतिहासिक तथ्य और हजारों साल का संचित ज्ञान हो सकते हैं।
क्या आधुनिक तकनीक के अहंकार में हम अपने ही इतिहास के कई अहम पन्नों को कूड़ेदान में नहीं फेंक रहे हैं?
ये सोचने वाली बात है।
ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इस पूरी ऐतिहासिक पड़ताल को आज के समय से जोड़ता है। ज्ञान और इतिहास की इस अद्भुत यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।